तो आज की हदीस देखिएगा, उसमें भी आपको मुझे यही रग़बत मिलेगी। सेकंड फेज पे जो आपको ये शीट आ जाएगी उसके अंदर हदीस क्या है, बहुत ही खूबसूरत हदीस है। आपने मैंने इसको बहुत दफ़ा पढ़ा और बहुत दफ़ा सुना हुआ है, लेकिन शायद हम इसको इस एंगल में कम ही सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के नाते से ये कितनी खूबसूरत हदीस है। और वो क्या है, आपने फरमाया पांच चीज़ों को पांच के आने से पहले गनीमत समझो, जवानी को बुढ़ापे से पहले, आज हैं हम जवान कल रहेंगे, हर चीज़ अपने वक्त पे इधर उधर हो रही है। आप में से मेरे में से जिसके पास अल्लाह के हुक्म से जवानी है उसकी फिक्र कर लें। फिर फरमाया सेहत को बीमारी से पहले, मालदारी को इफलास से पहले, और बेफिक्री को परेशानी से पहले, और जिंदगी को मौत से पहले। आप देखिए सही रिवायत है, नासिरुद्दीन अल्बानी ने इसको सही कहा, सही अल जामे में 1077 नंबर की हदीस है। ये चीज़ है जो आपको मुझे इंशाल्लाह अपनी इस छोटी सी जिंदगी से फ़ायदा लेने की तौफीक देगी। फिर आज की दुआ में देखिए इसी पारे के बिल्कुल जहां हमारा पारा आज का हाफ होगा वहां ये दुआ आएगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। 201 नंबर आयत है सूरत अल बकरा की दुआ है, इसको याद भी करेंगे। आज के लिए वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल, फस्तबिकुल खैरात, नेकी का मौका ढूंढें, कल तक आप ढूंढें और आके दिया करें, शेयरिंग करके इधर टेबल पे छोड़ दिया करें सुबह आते ही। शायद आप में से किसी की शेयरिंग इस काबिल हो कि दूसरों के साथ शेयर की जाए और आपका सदका जारिया बने, तो ढूंढिएगा। मसलन किसी को राइड देनी थी, किसी को फ़ोन करना था, यहाँ आने का इरादा था, शाम के दर्स का नहीं था, मौका मिला वहाँ भी पहुँच गए, किसी की मदद करनी थी, किसी को और कोई दुनिया का काम देना था, कोई ना कोई नेकी का मौका ज़रूर ढूंढें। और जो टाइम वेस्टर्स में से आज का टाइम वेस्टर है वो है डिस्ट्रैक्शन। हम में से बहुत सारे अपना वक्त इसलिए ठीक इस्तेमाल नहीं करते कि हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, समझते हैं क्या, यानी हम एक जगह फोकस नहीं होते हैं, एक काम कर रहे हैं बीच में दूसरे में पहुंच जाएंगे, दूसरे से पहुंचे तो तीसरे में पहुंच जाएंगे। और आज की शख्सियत अबू बकर सिद्दीक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक के लिए क्या फरमाया, मैंने जिसके ऊपर भी इस्लाम पेश किया उसने थोड़ा सा सोचा। हर एक इंसान नई चीज को एकदम तो कबूल नहीं करता सिवाय अबू बकर सिद्दीक के, क्या कि मैंने जब उनके ऊपर इस्लाम को पेश किया उन्होंने बगैर किसी हीलो हुज्जत के उस इस्लाम को कबूल किया। तो आइए अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ आगे चलते हैं कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, मेरे भी अंदर ये बात आ जाए कि जब कोई नेकी का मौका आए तो मैं इंतजार ना करूं, सोच में ना पड़ जाऊं, हाय अच्छा सोचते हैं देखते हैं करते हैं ऐसा सबको पूछते हैं कोई ना करेगा ना फिर मुझे बताना, नहीं किसी को ना बताना मैं करूंगी। बस तबेकुल खैरात करता ही वो है जो ये नेकी के मौके को अपने लिए एक बिजनेस समझता है, कहते हैं इस डील का किसी और को ना बताना ये मैं पूरी कर लूं, हाँ अगर मैं ना कर सकी तो फिर बैकअप पे किसी दूसरे का नाम रख लेना। अल्लाह ताला आज मुझे आपको इसी की तौफीक अता फरमाए और हम अपने आप को बेहतरीन तरीके से लें। हदीस उर्दू में शेयर की थी, रिकॉर्ड के लिए अरबी में भी बोल देती हूँ, सुनने की ज़रूरत है सुन लीजिए, लेकिन यह है कि लफ्ज़ तो नबी सल्लम की खूबसूरत है। हदीस के अल्फाज क्या हैं, अन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु कल कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, कौन सी पांच चीज़ें, शबाबक क़ब्ल हरमी का, व सेहतक क़ब्ल सक़मी का, व गिना का क़ब्ल फ़क्री का, व फराग का क़ब्ल शुगुली का, व हयात का क़ब्ल मौती का। पांच चीज़ों को पांच के आने से पहले गनीमत समझो, जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, मालदारी को इफलास से पहले, बेफिक्री को परेशानी से पहले, और जिंदगी को मौत से पहले। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। 5 सेकंड खामोश रहती हूँ और आप, बल्कि 10 सेकंड लेते हैं, बल्कि आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ें, फस्तबिकुल खैरात, मुहस्बा करें अपने आप से, खुद से पूछिए कि क्या हकीकत में वाकई मेरी दौड़ नेकियों की तरफ है। मेरी खामोशी आपका गौर व फिक्र का टाइम है। कभी कभी खुद से बातें किया करें, यकीन करें बहुत फायदा होगा। कब्र की तन्हाई को याद करेंगे ना तो उसके बाद तो फिर लोगों से ज्यादा अपनी फिक्र लग जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आयत 149, दोबारा किबले की तब्दीली की तरफ तस्करा है। 149-149 تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، یعنی دنیا کے کاموں کے دوران بھی نمازوں کو چھوڑو نہیں، نمازیں فوت نہیں کرو اور اللہ کے راستوں میں چلتے جاؤ، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو. بندہ مومن کا دل کمپس کی طرح ہوتا ہے، پرکار. آپ دیکھتے ہیں اس کے دو سرے ہوتے ہیں نا، ایک گھسا ہوتا ہے اور دوسرا گھومتا ہے. چھوٹے دائرے لگا لیجئے یا بڑے دائرے، سب ایک ہی مرکز کے گرد گھومتے ہیں، کوئی دائرہ دوسرے سے اوور لیپ نہیں کرتا. لیکن آپ ذرا سے مرکزی نقطے کو ہٹا کر ذرا سے آدھا انچ دور رکھ کر ایک دائرہ کھینچیے تو کیا ہوگا؟ پہلے سے لگے ہوئے دائروں کے اوپر کراس ہوں گے. یہ ہے میرا آپ کا مسئلہ. آج ہماری زندگی کے بہت سارے دائرے ہیں نا، گھر کا دائرہ، بچوں کا دائرہ، بیوی ہونے کے دائرہ، پھر آپ ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، پھر یہاں قرآن سیکھنے آتے ہیں، پھر آپ دین کو سیکھتے ہیں. تو کلیشز کب آتے ہیں؟ جب ہمارا فوکل پوائنٹ ہٹتا ہے. ایک کامیاب اور سکسیسفل انسان جو اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کرتا ہے، وہ اندر کا نقطہ نہیں چھیڑتا. چھوٹا دائرہ لگائیے، پھر بڑا لگائیے، پھر اور بڑا لگائیے، پھر بڑے لگاتے جائیے. آپ کی مصروفیات اس شہر سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل جائیں، نو پرابلم، یو شوڈ بی ریلیکسڈ، یو شوڈ بی فری. یہ جو بات ہے نا لک بزی ڈو نتھنگ، یہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنا مرکز چھوڑتے ہیں. میں کبھی اس چیز کو نہیں مان سکتی کہ بہت ذمہ داریاں ہوں تو وقت نہیں ملتا. چونکہ آپ یہاں دورہ قرآن کے لیے آ رہی ہیں تو اب آپ گھر نہیں ٹھیک دیکھ رہی، کل آپ قرآن کورس کریں گی تو آپ بچوں کو نہیں دیکھیں گی. یہ صرف مس مینجمنٹ ہوتی ہے. قرآن آپ کو مجھے فوکس ہونا سکھاتا ہے، ہر ذمہ داری کو دیکھتے ہیں، کب کہاں کیا، اس وقت میری کہاں ضرورت ہے، اب ادھر ہے نا، اب مت سوچیں گھر کیا ہوگا، بچے کیا کریں گے، رات کیا پکاؤں گے. اسی طرح جب شوہر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، کوئی ایک بات نہ کریں، ہائے جلدی کریں، کھا لیں، میں نے جانا ہے. ہم شور مچا کے گھر والوں کا جینا دھوبر کر دیتے ہیں. کوالٹی کے 5 منٹ دیں اپنے شوہر کو، صرف 5 منٹ، اور صرف ان کے لیے ہوں. بلیو می، اس کے بعد آپ 2 گھنٹے بھی نہ ان کو نظر آئیں، وہ مطمئن ہوں گے کہ یہ مجھے اگنور کر کے دین کا کام نہیں کر رہی. یہ زندگی میں اگر آپ سیکھ گئے، واللہ اللہ آپ سے شاید چاند ستاروں پہ بھی کام کروا لے دین کا. اللہ تعالی ہمیں دین کے کام کرتے ہوئے خاص طور پہ حکمت کی توفیق دے. ٹائم کو مینج کیے بغیر گھر والوں کو دشمن بنا کر ہم دین کا کام نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالی آپ کو مجھے صحیح طریقے سے اپنا رول پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. یاد رکھیے، لوگ ہم پہ بالکل نظر نہیں رکھتے. کب؟ جب ہم دنیا میں پھرتے ہیں، جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں، جب ہماری بھاگ دوڑ شاپنگ اور انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. لیکن جو ہی آپ دین کی طرف آئیں گے، ہر ایک آپ پہ حجت کرے گا. تو اللہ کہتا ہے اپنی طرف سے حجت کم دو. اکثر لوگ کہتے ہیں نا وقت نہیں ملتا، ہائے عورتیں بزی بڑی ہیں. تو میں کہتی ہوں پھر مالز کیوں آباد ہیں؟ اگر عورتیں بیمار ہیں، صحت اچھی نہیں، تو یہ شاپنگ مالز کیوں اتنے بھرے ہوئے ہیں؟ اس کا تو وقت ہے لیکن قبلہ درست نہیں ہے. پھر فرمایا، ہاں ان میں سے جو ظالم ہے ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی. یعنی آپ جو مرضی کوشش کر لیں، پھر جنہوں نے اعتراض کرنا ہے تو کر دیں، اب کیا کریں؟ اب جو بلا وجہ ہمارے منہ لگے ان کا کیا کریں؟ فرمایا، تو ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. خوش رہنے کا راز، ہیلدی لائف، اپنی زندگی کو روگی نہ بنائیے. بلیو می، اس دفعہ میرا دل ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی نعمت سے پیار ہو جائے. ٹائم اب جلنے کڑنے کی بجائے، دوسروں کو راضی کرنے کی بجائے، آپ اللہ کو راضی کریں. جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ دوسروں کے دل میں خود بخود اس کا روب ڈال دیتا ہے. ہم ادھر ادھر لڑکتے پڑکتے رہتے ہیں، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم سے وہ کام جو کرنا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اور ساتھ ہی فرمایا، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی. اور ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے. ہائی لائٹ کیجئے گا، وہ سارے کام جو پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے تھرو دعاؤں کی صورت میں تھے، آپ ان دعاؤں کی قبولیت ہو گئی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. सुनिए, आज भी यही तरीका है तालीम होगा। ये नसाब है, सिलेबस है इस्लामी इदारों का। किसी दीन के इदारे में जाकर क्या सीखना सिखाना है, ये उसका एजेंडा है। 3 दफ़ा कुरान में आता है, पहला गुजर गया, ये दूसरा है, तीसरा आगे आएगा इंशाल्लाह, जहाँ आएगा तस्करा करूँगी। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, तब्दीली कब आएगी? उम्मत वसत का रोल कब इख्तियार करेगी? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वर्किंग मेथडोलॉजी आपके तरीक़ेकार के मुताबिक काम करेगी। क्या किया था आपने? फरमाया, हमने तुम्हारे दरमियान को तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयात सुनाता है, तुम्हारी जिंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। याद रखिए, इसको नसाब का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम न जानते थे। करो क्या? फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। बस तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, कुफराने नेमत ना करो। अल्लाह अकबर। अब जिसका तज़किया हो गया वो तो कहेगा ठीक है अल्लाह जी, मैं आपको याद रखूंगा, और जिसका तज़किया ही नहीं हुआ वो सर झटकेगा, च्युइंगम चबाते हुए आईपैड से खेलते हुए कहेगा आई डोंट केयर, नहीं याद करता अल्लाह तो ना करे। इतनी गफलत होती है बाज़ दफ़ा के लोग कहते हैं कि अल्लाह हमें नहीं याद करता तो ना करे, हु केयर्स। हालांकि एक ईमान वाला जिसका तज़किया हो जाता है, जो वाकई सिबगत अल्लाह में रंग जाता है, जिसको वाकई फस्तबिकुल खैरात की मोहब्बत शुरू हो जाती है, फिर वो तो ऐसी आयतों को सुनकर कांप जाता है। आप देखिए, अल्लाह के 4 वादे हैं कुरान में, ये पहला वादा है, बाकी 3 भी याद करवाइएगा, आपको बताती रहूंगी इंशाल्लाह। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अगर अल्लाह ताला में कह दे फज़कुरूनी लाज़कुरुकुम तो क्या बड़ी बात थी। तो मुझे जितना मर्जी याद करते रहो, मैं तुम्हें नहीं करूंगा। जाहिर है कि बड़े लोगों को तो सब याद करते हैं, तो बड़े लोग तो सबको नहीं याद करते, ऐसे ही है ना। सदर ओबामा को तो शायद सभी नाम से जानते होंगे, तो लेकिन ओबामा का तो आपके मेरे नाम नहीं आते ना। अब ये तो इंसानी नाम है ना। अल्लाह की ज़ात अगर आपको ना याद रखे तो आपका क्या जोर है उस पर। लेकिन देखिए, अल्लाह को कितना प्यार है अपने बंदों से, वो कहता है नहीं तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। और शुक्र करो ना शुक्री ना करो। इससे क्या पता चला? जो मैंने इस चीज़ को समझा है अपने अंदाज से, वो क्या है, जितना जिंदगी में आपकी मेरी अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की बात, अल्लाह का दीन, अल्लाह की किताब आएगी, उतनी बरकत, रहमत, सुकून, इत्मीनान और खुशी आएगी। आज इंसानियत सजा काट रही है खुदा से दूरी की। आप देखिए, बच्चे को चैन कब आता है? जब माँ की गोद में आता है। नानी बुलाए और रोएगा, फुफ्फो पकड़े और चीखेगा, दादी सहलाए कहेगा नहीं, माँ मारे बच्चा मामा पुकारे। माँ ही मारती है, माँ की ही गोद में सुकून मिलता है। आज किस दुखी इंसानियत को सुकून मिलेगा? तो अपने रब की याद में मिलेगा। अल्लाह ताला हमें अपने से जोड़ ले। इसके बाद राह हक के तकाजे, जब भी आप अल्लाह के बनेंगे, जब फस्तबिकुल खैरात करेंगे, जब अपनी जिंदगी को अपने ढंग से गुजारना चाहेंगे, अपना ढंग होता है ना एक ईमान वाले का, वो लोगों के साथ नहीं चलता, जो आप कहें जब आप चाहें। अच्छा मैं तो क्लास में जा रही थी, फिर आप आ जाइए, चले फिर मैं नहीं जाती। अच्छा मैं तो कुरान के लिए जा रही थी, फिर आप शॉपिंग पे जाती हैं, चले फिर मैं चलती हूँ। नो, बी फोकस्ड। अब आप बने फोकस्ड हुए, आपने कह दिया ये 4 घंटे मेरे नहीं है, आप मेरे पास नहीं आ सकते, 1:30 से 4:30 के इन बिटवीन आई एम नॉट अवेलेबल, आपने कह दिया। अब आप कहेंगे तो बातें होंगी, क्या हो गया, बदल दिया, क्या हो गया, पहले तो कहती थी एनी टाइम, अब ये एनी टाइम किधर गया, बीच में से 3 घंटे किधर चले गए। अब ऐसे मामलात में क्या किया जाएगा? बड़ी खूबसूरत आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। अगली चंद आयतें सब्र पे हैं, लिख लीजिए इसका मौजू भी, कि दीन के रास्ते में चलते हुए या अल्लाह की मर्जी का बनते हुए ज़रूर मुश्किलात आती हैं। कैसे आती हैं? जैसे नबी सल्लम और सहाबा पर आईं, और हर दौर में आती हैं। जिस तरह अल्लाह के रास्ते में मदद का वादा है ना, इसी तरह याद रखिए अल्लाह के रास्तों में आजमाइशों का आना भी शर्त है। जब आए तो क्या करो? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद लो। थोड़ा सा इसको नोट करके देखें, मुश्किल आती है किसको ढूंढती हूँ, मुहासबा करें। परेशानी आती है किसको सुनाती हूँ, किसके फोन पर उंगलियां जाती हैं, शोहर को ढूंढती हूँ, बच्चों को ढूंढती हूँ, माँ को ढूंढती हूँ, बहन को ढूंढती हूँ। अल्लाह कहते नहीं, इस्तईन बिस्सब्री वस्सलाम। जब कोई मुश्किल जिंदगी में आए, फौरन अल्लाह से आकर थोड़ी सी बातचीत कर जाओ। दीन को नाफिज करने के रास्ते में जिद्दोजहद है, मेहनत है, मुश्किल है, इसको अल्लाह ही से ताल्लुक की बुनियाद पे आसान कर लीजिए। और साथ ही बता दिया, इन्नल्लाह मासबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। ढूंढिए जरा पूरे कुरान में अल्लाह का साथ किस किस को मिलता है। हम चाहते हैं कि अल्लाह का साथ मिले तो सबर करना पड़ेगा, और इस रास्ते में तो लोगों की जानें भी चली गईं। इसीलिए फरमाया, वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं इन्हें मुर्दा न कहो, ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा हैं मगर तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर नहीं होता। वो मौत मौत नहीं जो अल्लाह के रास्ते में आए। क्यों? खुद को मौत के मुंह में देकर वो शख्स मकसद को जिंदा कर देता। देखिए, शहादत हक की गवाही दी थी उम्मत वसत बनकर, सारी जिंदगी दुनिया में अल्लाह के नाम को बुलंद करने की कोशिशों में लगे रहे, आखिर में जान भी दे दी। ये जो शहादत है ना मौत वाली, ये बहुत आखिरी दर्जा है। इससे पहले जुबान से शहादत हक देनी पड़ती है, इससे पहले दीन के नफाज की कोशिशें करनी पड़ती हैं, इससे पहले अमली तौर पे दुनिया में इस्लाम को नाफिज करना पड़ता है। हमारे कल्चर में लफ्ज शहादत बहुत कॉमन है और बल्कि बहुत ही पसंदीदा है माशाल्लाह, और उसमें भी लोग ढूंढ रहे होते हैं किस काम पे शहादत का सवाब है, फिर वो जमा करके कहते हैं चलो अल्लाह हमें अचानक शहादत दे दे। यदि हम सोच रहे होते हैं, हम मॉल में गए, शॉपिंग कर रहे थे, बैग्स कपड़ों से भरे हुए थे, और एकदम फरिश्ता आया, खबर दे चलो मौत आ रही है, तुम्हारी शहादत, क्योंकि अचानक मौत है। एक जुमला लिख लें, जिंदगी भर शहादत हक की गवाहियां देते रहे, घर के बिस्तर पे भी मरेंगे इंशाल्लाह शहादत का अजर होगा। जैसी जिंदगी वैसी मौत, जो काम आप जिंदगी भर कर रहे हैं उम्मीद की जाती है किसी पर मौत आएगी, तो करें क्या, जिंदगी का किबला दुरुस्त करें। वली कुल्लिन विच्छुन हुवा मुवल्लीहा, आज तो दुआ करके जाइए दिल की गहराई से, अल्लाह मेरा किबला तो बदल दे, अल्लाह मेरा फोकस बदल दे, अल्लाह मेरी चॉइस बदल दे, अल्लाह मेरी तरजीहात बदल दे, मेरी प्रायोरिटीज बदल जाए, अल्लाह तू मुझे बदल, सिर्फ तू बदल सकता है। देखिए ना, ऊंट है तो उसकी नुकेल मालिक के हाथ में होती है ना, अब वो इधर जा रहा है, फिर उसकी नुकेल से पकड़ के इसको घुमाएगा तो इधर चल पड़ेगा, फिर उधर घुमाएगा तो उधर चल पड़ेगा, इधर घुमाएगा इधर चलेगा। कहें दिल की गहराई से, अल्लाह मेरी नुकेल तेरे हाथ में, दुआ में एक लफ्ज़ है नासियती भी यदिक, अल्लाह के नबी की दुआ में कि अल्लाह मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, पकड़ इसको और मोड़ दे, तो कहिए अल्लाह मेरा दिल बड़ा पापी है, तू बदल दे, मेरे दिल में दुनिया फंसी हुई है, आखरत डाल दे, अल्लाह मैं सुस्त हूँ तू मुझे एक्टिव कर दे, अल्लाह मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ तू मुझे फोकस्ड कर दे। क्या आप और मैं यकीन से मांगे तो अल्लाह नहीं देगा? बिल्कुल देगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर फरमाया, वला नब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अन्फुसि वस्समरात वबशिरिस साबिरीन, और हम तुम्हें जरूर खौफ व खतर, फाका कशी, जानो माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुबतला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। ये जिंदगी फूलों की सेच नहीं है, मुश्किलें तो आएंगी लेकिन सब्र करना है। इन हालात में जो लोग सब्र करें और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह ही के हैं, जरा से इस जुमले को हाईलाइट करें, قالوا انا لله وانا اليه راجعون, हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है, इन्हें खुशखबरी सुना दो, इन पर इनके रब की तरफ से बड़ी इनायात होंगी, इसकी रहमत उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग रास्त रो हैं। सबर सबर के साथ आता है। लिखिए, जिंदगी का खुलासा सबर है, सबर से सारी नेकियां फूटती हैं। एक जुमला लिख लीजिए, जम बना दें, फस्तबिकुल खैरात का की पॉइंट सबर है। मन मारना पड़ता है सबर करते हुए, पैसा लगता है सबर करते, हर चीज का एंड सबर है। आप देखिए ना, वक्त लगा, सेहत लगी, थकन हुई, एफर्ट्स हुई, घर को सेटल डाउन किया, इतना कुछ कर करा के अगर कोई नेकी मिली तो अल्लाह ताला आपको मुझे एक एक सेकंड पे अजर देगा ना। इसलिए अल्लाह सुभान ताला से कहें कि अल्लाह तू मुझे हर मुश्किल पे सब्र की तौफीक दे। और इसका आसान सा हल बताऊं, मुश्किलात का तذکرہ करना छोड़ दें। अव्वल तो हमें मौका ही कम मिलता है नेकी का, मिल जाए शिकवे हाय था कि तहज्जुद शुरू कर दी, सो ही नहीं ना, असर मेरा तहज्जुद शुरू कर दी, बहाने बहाने से बता भी देते हैं, वैसे मैं आंखें सूझी हाँ असर मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ ना, अच्छा बस वो नफिल पढ़ती हूँ ना, बड़े 500 दाने की तस्बीह है। भाई आप किसको सुना रहे हैं? आप अपने ऊपर लीजिए, किसी के घर आप गई खाने पर, अब अगले ने खाने के ऊपर 10 चीज़ें तो बनाई और के थक गई, कमर टूट गई, सुबह से बैठी नहीं हो, बच्चे भी रोते रहे, मुझे बताएं वो लुक में आपके गले में जाएंगे या बाहर उड़ लेंगे? आप कहेंगे कि ना ही बुलाती बची आप एक ही पका देती, दाल चावल बना लेती, मुझे शिकवे तो ना सुनाए। अब आप इसको अपने ऊपर लें, हम करें अल्लाह के काम और रोएं। जब से दीन पे आए लड़ाई शुरू, जब से दीन पे घर में बेसकूनी, जब से दीन पे बच्चे रुल गए, जब से दीन का काम कर रही हूँ, मेरे तो मियाँ दूसरी शादी की धमकियाँ ही दे रहे हैं, तो अल्लाह आपको एक दिन कहेगा ना कि आप ज़रा छुट्टी फरमाएं, और वो छुट्टी बड़ी महंगी पड़ती है, अल्लाह नाराज़ होता है ना जब नेकी की तौफीक छीन लेता है। हमेशा कहें अल्लाह इस काम को ऑनर समझ के, इज्जत समझ के, अपने मन का सौदा समझ के करूं। किसी को बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए ना, तो आप देखिए जरा फिर उसके टौर कैसे होते हैं, पहले कंपनी का नाम बताते हैं फिर अपना बताते हैं, गाड़ी के आगे उनके नाम की तख्ती लगा लेंगे। बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने शहादत हक का काम दिया हुआ है, आप सब उसमें शरीक हैं। मत सोचिए कि कोई खास लोग होंगे जिनके कोई बैजिस लगे होंगे, आप सब इस वक्त शहादत हक के राही हैं। दुआ कीजिए कि मौत तक अल्लाह हमें इस पर रखे और हमारे बाद हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को और हमारे शागिर्दों को इस रास्ते पे लगा ले। सदका जारिया की ऐसी फसलें तैयार हो जाएं कि कल क़यामत के दिन हमें यकीन ही ना आए कि ये हमारी टूटी फूटी नेकियाँ थी। जैसे इब्राहिम ने काबा बनाया तो उस खाना काबा की तामीर की, उस वक्त वो सोच सकते थे इतने लोग वहाँ होंगे? आज मेरे लिए हज उमरे के मंजर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश किए थे, वो तो माने ही ना। और अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने अल्लाह के नबी के साथ औखा सौखा वेला गुजारा, मुश्किल वक्त में गुजारा, कि आज वो सोच सकते हैं कि आज मक्का से मदीना का रास्ता इतना खूबसूरत है, कभी अब हिजरत की राहें तो पड़े। क्या वो 500 मील का फासला ऊंटनियों के ऊपर सफर करके कितने दिन में मक्का से मदीना पहुंचे? आज आप भी उसी तरीकुल हिजरा पे जाते हैं। आपको पता है कि मक्का से मदीना की रोड इस वक्त भी उसी रास्ते पे बनाई गई है जिस पे अबू बकर और नबी सल्लम के कदम लगे थे। लेकिन आज कितनी सहूलतें हैं, तो आज अगर दीन में मुश्किलें हैं ये हमेशा नहीं रहेंगी, ये सिर्फ मेरा आपका टेस्ट होता है। आप और मैं जड़ें बनाने वाले काम कर रहे हैं, जमीन खोदनी पड़ेगी, खुदाल पकड़ने पड़ेंगे, पसीने भी आएंगे, बाद में जब दीन के पौधे पे बहार आएगी, आपकी मेरी कब्र में इसकी रोशनी जाएगी, इसकी बहार जाएगी। लेकिन आज अगर सुस्त होकर घर बैठ गए, याद रखिए कल हसरत होगी, क्योंकि अल्लाह कहता है कि फस्तबिकुल खैरात, वाले लोग ही असल में काम करते हैं। और मैं कह सकती हूँ दुनिया की तरक्की भी उन्हीं लोगों ने की जो फस्तबिकुल खैरात कह लें या कुछ करने वाले थे, सुस्त मजबूर होने वाले, हर वक्त रहम खाने वाले खुद पर कभी दीन का काम नहीं करते। दुनिया के काम तो क्या क्यों करेगा, इसीलिए फरमाया मुश्किल आएगी, आएगी, मैंने कहा आएगी, मैंने कब कहा था कि इस रास्ते में आसानी है? वो एक शेर भी है ना कि मेरे घर के रास्ते में कहीं कहकशां नहीं, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सकते हो तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं, और वल्ला ही लोगों को वो पत्थर और कांटे लगते हैं, आपके रास्तों में वो फूल होंगे। दूसरों को लगता है आपकी मुश्किल है, आपका दिल अंदर से खुशियों से ऐसे उछल रहा होता है कि पता नहीं आज खुशखबरी कौन सी मिल गई है। शर्त एक है कि आप मुवल्लीहा, अल्लाह के दीन की तरफ अपने आप को झुका ले। अब यहाँ एक अमली मिसाल है फस्तबिकुल खैरात की, अब तो ये याद हो जाएगा ना लफ्ज, मेरा ले 20 से ज्यादा दफा तो मैंने अभी तक बोल दिया। अमली जी तो जो हद बड़ी खूबसूरत और मजे की बात है कि आपकी तरह एक औरत का जिक्र है, आइए देखते हैं। इन सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता वे तमर फला जनाह अलैहि यतवफा أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم। यकीनन सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, बस जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उमरा करे इसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान सही कर ले। हाँ, जो खुशी के साथ यानी बरज़ और रग़बत कोई भलाई का काम करे, इसको हाईलाइट करें, नेकी करना बड़ी बात नहीं, خوشی کے ساتھ نیکی کرے تو اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. اور جب اللہ قدر کرتا ہے تو وہ قدر کی حد کر دیتا ہے. وہ ہے نا حدیث قدسی پہ اشعار بھی کہ میری راہ میں بے قدر ہو کے تو دیکھ, قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا. اللہ نے ایک عورت کے قدموں کی نشانیاں یہاں رکھ دی, حضرت حاجرہ کا تذکرہ. یاد ہے سب کو واقعہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا, اور بظاہر بیوی حاجرہ بچے کی پیاس کے لیے دوڑ رہی تھی نا, واقعہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب کو آتا ہے. کیسے سفر مروہ کے بیچ میں جاتی ہیں اور نیچے جاتی ہیں تو تیز بھاگتی ہیں کیونکہ بچہ نظر نہیں آتا, اور اوپر جاتی ہیں تو آہستہ ہو جاتی ہیں, اور پھر ایسے سے ایسے جاتی ہیں. اللہ کو اس عورت کے قدم اتنے پیارے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آج کیا قیامت تک حج کا حصہ بنا دیا, عمرے کا حصہ بنا دیا. مردوں کو اس ایک عورت کے قدموں پہ چلا دیا. کیوں؟ کہ وہ بھاگ دوڑ اللہ کے راستے میں تھی. اور لکھ لیجئے ایک جملہ, ہر ایک کو صفحہ اور مروہ کی صحیح نصیب نہیں ہوتی, فرض بھی نہیں ہے, ہر ایک نہیں جا سکتا حج اور عمرے پہ, بٹ عملی زندگی کی بھاگ دوڑ ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. آج کل آپ کی بھاگ دوڑ نہیں لگی ہوئی, یہ ہے صفا اور مروہ. اپنی اپنی جگہ پہ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کریں, سستی چھوڑ کے, آنر سمجھ کے, دل کی خوشی سے, مسکراتے چہروں کے ساتھ. اگر آج آپ اللہ کے راستوں پہ بھاگ گئیں, آپ دیکھیے گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ راستے بنا دے گا جس کا آپ کو مجھے اندازہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عورت کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے, عورت کے اندر بہت سٹیمنا ہے. اللہ نے ایک عورت کو وہ کچھ دے دیا جو شاید کسی مرد کو بھی نہ ملا ہو, تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کی عورت بھی یہی صبر کرے. بی بی حاجرہ کا صبر اللہ کے دین کو بچانے کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سعی کو, ممتا کو خراج تحسین پیش کر دیا, سیلیبریشن آف مدرہڈ. لیکن آج کی عورت سست ہو گئی, آج اس کو اپنے بچے کی ہر بھوک اور پیاس کی فکر ہے, نہیں فکر یا کم فکر تو دین کی کم فکر ہے. کھانا نہ کھائے ایک وقت میرا بچہ, پھر دیکھے میرے موٹے موٹے آنسو نکلتے ہیں. نہ پڑھے میرا بچہ ایک وقت کی نماز, پھر دل پہ کیا بیتتی ہے. اصل میں آج کی ماں کو یہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ ایمان کے راستے میں مشکلات نہ آئیں, آ جائیں تو اللہ تعالیٰ صبر دے. اور یاد رکھیے, ایمان والے پہ مشکل ڈالتا بھی اللہ ہے, اور مشکل ڈال کے نا ہاتھ رکھ دیتا ہے اس کے دل پہ. جیسے ماں بچے کو انجیکشن لگواتی ہے نا, پھر اس کو پیار سے گود میں سمیٹ لیتی ہے, ہائے میرا بچہ تجھے سوئی چبھنے والی ہے. اللہ بھی آپ کو ایسے تھام لیتا ہے, آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتی وہ مشکل. لیکن پھر بھی ان سب کے بعد جہاں مشکل آ جائے تو نفس کو شٹر نہیں کرنا, پاؤں نہیں پٹکنے, بس یہ کہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون.